विषय को शुरू करने के पहले एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने रखेंगे। शायद आप में से किसी ने सुना भी होगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर जो एक महान शासक, जब फर्स्ट टाइम वो इंडिया आए और भारत का भ्रमण करने के पश्चात जब वापिस वो अपने देश ग्रीस में लौट रहे थे, तो लौटने के समय उनको एक विचार आया। ये भारत संतों की भूमि है, आध्यात्मिक भूमि है, पवित्र भूमि है, क्यों नहीं मैं यहां से एक अच्छे संत को अपने देश ले चलूं। और इस विचार से अलेक्जेंडर एक अच्छे संत की खोज में निकल पड़े। एक जंगल में गए संत को ढूंढने के लिए। जंगल में बहुत अंदर 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 जाते जाते अचानक वृक्ष के नीचे उनको एक संत तपस्या करते हुए दिखाई दिए। अलेक्जेंडर ने उनको कुछ नहीं बोला, क्योंकि संत आंख बंद करके तपस्या में लीन थे। तो राजा भी उनके पास में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद जैसे संत ने अपनी आंखें खोली, तो अलेक्जेंडर ने संत को प्रश्न किया, हे महान संत, ये भारत आप जैसे महान तपस्वियों की भूमि है, आध्यात्म की भूमि है, और अब मैं ये भारत का भ्रमण करके वापस अपने देश लौट रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मेरे देश में चलें, ताकि वहां भी एक आध्यात्म का प्रचार हो सके। जैसे संत के सामने अलेक्जेंडर ने यह प्रश्न रखा कि आप मेरे साथ मेरे देश में चलेंगे, तो संत ने क्या कहा होगा, हाँ हाँ ठीक है चलता हूं ऐसा, हाँ नहीं मना कर दिया नहीं जाऊंगा, हाँ क्या किया होगा, हाँ या ना, या हा ना हा ना। भारत भूमि से प्यार होने के कारण उन्होंने कहा नहीं, मैं इस देश को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और जैसे ही ये बात अलेक्जेंडर ने सुनी, उन्हें जोरदार गुस्सा आने लगा, और गुस्से में आकर उन्होंने अपनी तलवार को बाहर निकाला और संत को कहा, आप जानते मैं कौन हूं, और ये तलवार जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, चाहूं तो इस तलवार से मैं आज तुम्हारे दो टुकड़े कर सकता हूं। सुन करके संत मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा दो बातें, एक तो जो आपने कहा कि ये तलवार जो मेरे हाथ में है मैं इस तलवार से तुम्हारे दो टुकड़े कर सकता हूं, बेशक तुम इस तलवार को यूज करके मेरे दो टुकड़े कर सकते हो, पर तुम मेरे शरीर के टुकड़े कर सकते हो, मेरी आत्मा के टुकड़े नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि जानते हो कि मैं कौन हूं, हां मैं जानता हूं। संत ने कहा आप मेरे गुलाम के भी गुलाम हैं। ये सुनकर के अलेक्जेंडर बड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा कि क्या इसका अभिप्राय आप मुझे समझा सकते हैं कि आपने जो कहा आप कुछ भी नहीं हो, मेरे गुलाम के भी गुलाम हो, इसका मतलब? संत ने कहा, हे राजन, मैंने बहुत वर्षों तक तपस्या करते करते इस क्रोध पर जीत प्राप्त की है और क्रोध को अपना गुलाम बनाया है, तो आज तुम उस क्रोध के गुलाम हो तो तुम क्या हो गए? मेरे गुलाम के भी गुलाम। ऐसी गुलामी की जंजीर, ये क्रोध हर एक आत्मा के अंदर जंजीर की तरह बांध देता है। क्या हम भी ऐसी गुलामी की जंजीर में जीना चाहते हैं? अगर नहीं तो याद रखें, एक मिनट भी अगर हम गुस्सा करते हैं तो हम अपनी जिंदगी के 60 सेकेंड्स खुशियों के गंवा देते हैं। एक मिनट भी अगर हम गुस्सा करते हैं तो एक मिनट गुस्सा नहीं करते, लेकिन हम अपनी जिंदगी के 60 सेकेंड्स खुशियों के गंवा देते हैं। हम चाहते हैं हम अपनी लाइफ में सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें, लेकिन एक बार चेहरा बिगड़ने के बाद हमारी जिंदगी भी बिगड़ जाती है। तो इस एंगर की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि एक ऐसा नकारात्मक, इट इज अ नेगेटिव इमोशनल रिएक्शन टू सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस आर पीपल विच डिस्टर्ब अवर पीस ऑफ माइंड एंड हैज हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द सेल्फ एंड अदर्स। एक ऐसा नकारात्मक भावनाएं हैं, और जब यह भावना मनुष्य के मन में पैदा होती है तो उस इंसान का पीस ऑफ माइंड, उसके मन की शांति डिस्टर्ब होने लगती है, और उसका असर मात्र दूसरे पर नहीं लेकिन खुद पर भी और दूसरे पर भी, दोनों पर उसका असर पड़ने लगता है। तो ये बार बार हमारे मन के नेगेटिव इमोशनल्स हैं जिसे हमें चेक करने की और चेंज करने की जरूरत है। अब बात आती है, क्या क्रोध करना आवश्यक है? आप सबका दिल क्या कहता है? क्या क्रोध करना आवश्यक है? नहीं तो फिर क्यों करते हो? जब पता है जरूरी नहीं है, उसके बिना भी काम हो सकता है, तो फिर क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी जिंदगी में कभी दूसरा ऑप्शन ट्राई ही नहीं करते, और हमने अपने मन के अंदर ये गांठ बांध के रखी हुई है कि क्रोध नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, क्रोध नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ऐसा कि चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। फिर सोचते हैं, क्रोध नहीं करेंगे तो बच्चे पढ़ाई, सबसे ज्यादा माँ को टेंशन होता है इस बात का। हमें घर में बच्चों के सामने रहना इसीलिए जरूरी है कि बच्चे हमको सामने देखते रहेंगे तो पढ़ेंगे। हम घर से बाहर गए, टीवी चालू हुआ, बच्चों की पढ़ाई बंद, हम आएंगे चिल्लाएंगे, फिर बच्चे पढ़ना शुरू कर। तो ये मन की गांठ कि बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। ऐसे ऑफिस में जाते हैं, बॉस की बुद्धि में होगा, अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो असिस्टेंट काम नहीं करेंगे। क्योंकि हमने अपने लाइफ का जो टारगेट है, वो टारगेट क्या बना के रखा है? काम। मुझे अपना काम पूरा करना है और कैसे भी, चाहे मार धाड़ करके, चाहे चिल्ला करके, चाहे लड़ झगड़ करके, चाहे कैसे भी, मुझे अपना काम पूरा करना है। और इसीलिए हम कभी भी दूसरा ऑप्शन जिंदगी में ट्राई, हमें ये भी समझना चाहिए कि जो काम प्यार से नहीं करवा सकते वो काम मार्स से तो हो जाएगा, जो काम प्यार से नहीं हो सकता वो मार्स से तो बिल्कुल संभव। तो जब हम कार्य की शुरुआत करते हैं तो कार्य की शुरुआत से हमें इस बात को चेक करना है कि वो कार्य करते करते मुझे खुशी से काम करके और खुशी की मंजिल पर पहुंचना है, या कार्य पूरा हो जाए, जिनको मैंने काम सौंप के रखा है उन्होंने काम पूरा कर दिया उसके बाद मुझे खुशी मिलेगी, नहीं तो तब तक टेंशन, तनाव या अंदर में गुस्से के भाव पैदा होते रहते हैं। तो अगर हम परसेंटेज निकालते हैं, जिसमें से आप सबसे भी जब मैंने पूछा कि कितने लोग समझते हैं कि गुस्सा तो करना ही पड़ता है, हाथ खड़ा करेंगे? कितने लोग समझते हैं गुस्सा तो करना ही पड़ता है, उसके बिना काम चलता ही नहीं है? हाँ, और थोड़े हैं, और बाकी समझते हैं कि गुस्से के बिना काम चल सकता है। अब जो ये समझ रहे हैं कि गुस्से के बिना काम नहीं चलता है, उनको तो आगे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए एक छोटी सी एंगर प्रोसेस हम करेंगे। आप सभी अपने स्थान पर अलर्ट होकर के आंख बंद करके बैठिए, और कुछ पॉइंट्स जो आपको दी जाएगी उन पॉइंट्स को आप अपने अंदर याद करें, उन बातों को याद करें, उसको अनुभव करें। सभी ने आंखें बंद की, रियलाइजेशन का ये समय है। फर्स्ट पॉइंट, थिंक ऑफ ए सिचुएशन दैट मेक्स यू एंग्री। उस सिचुएशन को याद कीजिए जिसने कभी आपको गुस्सा दिलाया हो। एक ऐसी सिचुएशन को याद कीजिए जिसने कभी आपको अपनी लाइफ में गुस्सा दिलवाया हो। नेक्स्ट, हाउ डू यू बिहेव इन दिस सिचुएशन? जब आपने गुस्सा किया था उस समय आपका बिहेवियर कैसा था, आपका व्यवहार कैसा था? उस सिचुएशन को याद कीजिए, और जब आप गुस्सा कर रहे थे उस समय आपका व्यवहार कैसा था? थर्ड, व्हाट आर द फिजिकल इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी? जब आप गुस्सा कर रहे थे तो उसका आपके शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा था, क्या असर पड़ रहा था, क्या फिजिकल इफेक्ट्स उस समय हो रहे थे? फोर्थ, हाउ डज इट मेक यू फील? उस समय आपको क्या महसूस हो रहा था, आप क्या महसूस कर रहे थे? फिर, व्हाट थॉट्स अराइज इन योर माइंड? उस समय कौन से विचार आपके मन में उठ रहे थे, चल रहे थे, जब आप क्रोध वाली परिस्थिति का सामना कर रहे थे, कौन से विचार आपके मन में उठ रहे थे? नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटकम? फिर उसके रिजल्ट क्या रहेगी? एंड लास्ट, If this happened again, would do the same? क्या ऐसी ही परिस्थिति दोबारा आपके सामने आएगी तो आप इसी तरह से करेंगे, इसी तरह से करना चाहेंगे? ओके, अपनी आंखें खोलें। सबने याद किया? हाँ, याद किया उन परिस्थितियों को? ओके, याद किया? किस किसने किया, किस किसने किया? ये एक्सरसाइज किस किस ने की? अच्छा, आप में से कोई एक आके शॉर्ट में 2 मिनट में अपना वो अनुभव सुना सकते हैं कि ऐसे समय पे मुझे गुस्सा आया था, ये इफेक्ट्स हुए थे? आइए 2 मिनट में शॉर्ट में सुनाइए। आइए यहाँ यहाँ से आगे आइए आगे आइए। हमारे भाई के लिए तालियां बजाओ, हिम्मत। आइए
अल्पेश पटेल फ्रॉम पुणे। मेरा 3 साल का बेटा है जिसका नाम सोहम है। वो अपने बचपन के हिसाब से कुछ ज्यादा ही शरारती है, घर में मेरे अकेले से ही डरता है। उसकी मम्मी जैसे उसका बचाव पक्ष है, मैं कुछ वगैरह बताता हूँ तो उसके तरफ चला जाता है, लेकिन कभी कभी उसकी मम्मी से भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, पढ़ाई वगैरह करता नहीं है। तो एक बार बहुत ही घर पे मेहमान वगैरह आए थे और जो हमें शोभा नहीं दे वैसे ही मस्ती वगैरह बहुत ही कंटिन्यूस उसकी चालू थी। तो 5-6 बार मैंने उसको हमेशा की तरह से आंख दिखा के कंट्रोल करने का ट्राई किया, लेकिन बाकी लोग के सामने वो मेरा मतलब कुछ सुनता ही नहीं, ऐसा बिहेवियर करके और शरारत करने लगा। तो फिर मैंने एक मेरा टेम्पर चला गया और मैंने उसको पकड़ के ऐसा जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसे बहुत बुरी तरह से उसको उठा के सीधा बाथरूम में लेके गया। वो बाथरूम से बहुत डरता था, तो बाथरूम में लेके जाने के बाद उसको धमकाया मैंने अंदर और कड़ी बंद कर दी। तो वो नेचुरली बहुत डरता है अगर दरवाजा वगैरह बंद कर दे तो फिर वो मैं नहीं करूंगा, अभी ऐसा नहीं करूंगा करके रोने लगा। तो मैंने उसको बताया रोना बंद करने तो यहाँ ही पुर के रख दूंगा ऐसा। तो फिर भी वो रोता रहा, लेकिन मैं कितना भी उस पर टेम्पर किया, गुस्सा किया, लेकिन रोना बंद नहीं किया, ऐसा नहीं करूंगा करके फिर मैंने वापस बाहर निकाला। जैसे मैंने वापस बाहर निकाला तो दौड़ के और ज्यादा शरारत करके मस्ती करके मम्मी के पास जाया, रोया, किस गया, मतलब पहले जितना शरारत करता था ना उससे ज्यादा, मतलब मैंने जो इस एंगल से उसको कंट्रोल करने का ट्राई किया वो हो ही नहीं पाया, ऊपर से मेरी मेहनत बिगड़ गई। मैं भी फिर सोचने लगा कि मासूम है, खाली मैंने गुस्सा कर दिया, लेकिन उससे अभी वो प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, मेरा खुद का टेम्पर चला गया और वो भी मेरे से, मतलब ऐसा मैं फील करता हूँ कि अभी सहमा रहता है, डरता ही रहता है अपनी मन की बात, शायद मुझे वो नहीं बता पाएगा इसके फ्यूचर, ऐसा मुझे फीलिंग हो रहा है। लेकिन ये कोई क्या बोलते हैं कि सॉल्यूशन नहीं है।
हम जिस विधि से कंट्रोल करना चाहते हैं वो हमको कंट्रोल करना सीख लेते हैं, है ना? बच्चे कंट्रोल नहीं होते, वो हमको कंट्रोल करना सीख लेते हैं। तो अब हमें समझ में आ जाता है कि मैंने ऐसा ऐसा उसके साथ बिहेव किया और उस समय पर मेरे ऊपर ही उसकी इफेक्ट पड़ी, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं मिला। और अब जब दोबारा ऐसी कोई बात आएगी तो मैं ये कदम नहीं उठा करके कुछ नया स्टेप उठाऊंगा जिससे कुछ सोल्यूशन निकल सके। 4 चीजें हैं। क्या क्रोध पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है? क्रोध करने से क्या हानियां होती हैं? और क्रोध आने के मुख्य कारण क्या हैं? और जब कारण का पता चल जाए तो उसका हम निवारण भी कर सकते हैं। क्या क्रोध पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है? अब पहला प्रश्न, क्या क्रोध पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है? है? आवाज कम आ रहा है, थोड़ा सोचते होंगे, पॉकेट मनी तो रखनी चाहिए, है ना? समय समय पर काम आएगी थोड़ी पॉकेट मनी गुस्से की तो रखनी चाहिए, है? कारण, क्रोध भय का निर्माण करता है, क्रोध डर पैदा करता है, और डरा हुआ व्यक्ति कभी ठीक से सोच नहीं सकता, डरा हुआ व्यक्ति ठीक से बोल नहीं सकता, डरा हुआ व्यक्ति ठीक से कोई कार्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अंदर में भय। आपने कई बार किसी व्यक्ति को देखा होगा जब वो डरा हुआ होता है, आप उसको कोई छोटी सी भी चीज पकड़ाएंगे तो उसके हाथ कांपने लगते, उसको कोई बात बोलने के लिए कही जाए तो उसका मुंह कांपने लगता है, उसके पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि अंदर में भय है, डर है, और उस डर के कारण न वो सोच पा रहा है, न बोल पा रहा है, न कर पा रहा है। एक छोटी सी एक्सरसाइज हम यहाँ करेंगे, कोई दो भाई यहाँ आ सकेंगे, कोई दो भाई आ जाइए, दो भाई कोई भी आइए, ओके। आपका नाम? विपुल भाई। आपका नाम? दामजी भाई पटेल। भाई दोनों भाइयों के लिए, हाँ। अभी देखो ये क्या करते हैं दोनों मिलके, अच्छा फेस टू फेस कर लीजिए दोनों एक दूसरे के, हाँ थोड़ा सा ऐसा सामने हो जाइए ताकि सब आपको देख सके। दामजी भाई आपके पास पेन दिख रहा है मुझे पॉकेट में, हाँ पेन निकाल लीजिए और दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप बना दीजिए। अब आपको क्या करना है दामजी भाई, ये बड़ा प्यारा सा पेन है आपका, इस पेन को जितना गुस्सा आए, जितनी जोर से आप चिल्ला करके गुस्से में आकर के, आपको ये पेन विपुल भाई को देना है। तैयार? तैयार है देखो वो, हाँ ओके। जितनी जोर से गुस्सा आए चिल्ला करके आपको ये पेन विपुल भाई को, अब आप जिस भी तरह से देना चाहे करिए। वाह क्या प्यार भरा है, लगता है आपको गुस्सा आया। हाँ दामजी भाई गुस्सा आया? आया मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया। हाँ प्यार से गुस्सा आया, ओके। विपुल भाई आप कर सकेंगे जितनी जोर से? अच्छा ठीक है, अभी तो आपने गुस्से की हरकतों में आकर के पेन दिया, ठीक है दामजी मैं वापस पेन निकाल लीजिए, कोई लेके नहीं जाएगा, इतनी जल्दी मत रखिए भाई। अब थोड़ा गुस्सा करने की जो कोशिश की थी उतने ही प्यार से अब वो पेन विपुल भाई को पकड़ा दीजिए, ओके। विपुल भाई आप भी उनको प्यार से पकड़ा दीजिए, ओके। अब दोनों जरा गले मिल लीजिए, अपने स्थान पर बैठे, हम ट्रैफिक कंट्रोल करके फिर आगे करेंगे। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज हम देख रहे थे, विपुल भाई और दामजी भाई हमारे सामने थे। क्या आप सबने महसूस किया कि गुस्सा आ रहा था उनको? हाँ नहीं, अभी अचानक ही मैं उनको कहूँ जरा गुस्सा करो तो पॉसिबल भी नहीं है, है? और उस मूड में भी नहीं होते हैं। पर कहने का भाव, कई बार जब एक्सरसाइज कराई जाती है और गुस्से में आकर वो पेन फेंकते हैं तो वो पेन सामने वाले के हाथ में नहीं जाता। तो कहने का भाव कि जब वो पेन फेंक कर दिया जाता है तो एक छोटी सी चीज भी हम अपने पार्टनर को पकड़ा नहीं, एक छोटा सा काम नहीं कर सकते। तो जिंदगी के बड़े बड़े जो काम है वो कभी भी गुस्से से संभव नहीं हो सकते हैं। दो चीजें हैं, एक है सेपरेशन और दूसरा है एग्रेशन। या तो हम अपने गुस्से को दबा दें, करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, दबाते दबाते जाएं, दबाते जाएं, कोई भी बात आए उसको दबाते जाएं, और या तो हम अपने गुस्से को बाहर निकाल दें, जैसे भी हम अपने गुस्से को बाहर निकाल दें। दोनों में से क्या ठीक लगता है, दबाना या बाहर निकालना? हाँ, भाइयों की तरफ से कम जवाब आ रहा है, बाहर निकाल देना। और बहनें क्या कह रही हैं? बाहर निकाल देना, कोई भी दबाना, क्योंकि कोई भी चीज को जितना दबाया जाता है वो उतना ही फोर्स से बाहर निकलता। स्प्रिंग जितना दबाओ उतना बाहर जोर से आएगी और उतनी ही कष्टदायक होती है वो चीज। अब बाहर जो निकालने का तरीका है वो तरीका भी तो हमारा सही होना चाहिए। मैं अपने अंदर के भावनाओं को, अपने इमोशंस को, अपनी बातों को, अपने गुस्से को मैं जिस तरह से बाहर निकाल रही हूं उसका भी तो कोई एक तरीका होना चाहिए ना। या मन में जो आया चिल्लाना डांटना नहीं, यही तो एक तरीका नहीं है ना। तो कोई बात जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, जिससे मुझे किसी से तकलीफ हो रही है, मुझे वो बात पसंद नहीं आ रही है, तो गुस्से से ही व्यक्त करना ही जरूरी? मैं अपनी बात सामने वाले को कहूं लेकिन कहने का तरीका बड़ा संयमित होना चाहिए, बड़े प्यार से स्नेह से हमें दोनों के बीच का रास्ता निकालना है। जरूर कहनी अपनी बात लेकिन गुस्से से ही कहना ये कोई जरूरी है? और जब हम प्यार से संयम से उस बात को सामने वाले के आगे रखते हैं तो एटलीस्ट हमारा तो अपने ऊपर कंट्रोल हो ही जाता है, रहता ही है। अब इस क्रोध के कारण हमारे शरीर पर और हमारे मन पर क्या असर पड़ता है, हम ये सारी बीमारियां देख रहे हैं इसमें। और उसमें सबसे पहले क्या है? हाँ, ब्लड प्रेशर, बीपी हाई हो जाता है। गुस्सा करने के बाद तो होता ही है, पर कई बार जिससे मेरी बनती नहीं, जिससे मुझे दर्द है, जिससे मुझे तकलीफ है, उसको देख भी लूं तो अभी गुस्सा किया नहीं है, पर जिससे मुझे दर्द है, जिससे मुझे तकलीफ है, जिससे मुझे नफरत है, जिसके प्रति वैर है, वो व्यक्ति भी अगर दिखाई दे जाए तो कहेंगे बस यही मेरे ब्लड प्रेशर का कारण है, इसको जब जब देखती हूं मेरा बीपी हाई हो जाता। अब देखने से हाई हो जाता तो करने से अटैक आ जाएगा करने से तो और ज्यादा कंडीशन खराब हो जाएगी। तो ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, एक बार ऐसे 500 लोगों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया और वो 500 लोग ऐसे थे जिनको एक बार हार्ट अटैक आ चुका था। उन 500 लोगों पर कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया और वो प्रयोग क्या था कि जिनको एक बार अटैक आ चुका है उन 500 को सामने बिठाया गया और उनको कहा आपको अभी गुस्सा करना नहीं है, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति का अपने मन में निर्माण करो और महसूस करो कि मैं उस परिस्थिति से जूझ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। गुस्सा करना नहीं है, सिर्फ अंदर ही अंदर संकल्पों से आप उस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, उस चीज को आप अपने मन में निर्मित करो। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब वैज्ञानिकों ने उन पर प्रयोग किया तो ये देखा गया कि जिनको एक बार हार्ट अटैक आ चुका था, वो मात्र अंदर में संकल्पों से परिस्थिति को जूझ रहे थे, तो वैज्ञानिकों ने देखा कि उनको दोबारा अटैक आने के चांसेस बढ़ गए थे, दोबारा अटैक आने के चांसेस बढ़ गए थे, मात्र अंदर ही अंदर संकल्पों से परिस्थिति को, क्रोध वाली परिस्थितियों को जूझने से। तो ऐसे हमारे हार्ट पर भी इसका असर पड़ता है, और सिर दर्द, जैसे कहा ना ये मेरे बीपी का कारण, ऐसे सिर दर्द के लिए भी लोग कहते हैं यही व्यक्ति मेरे सिर दर्द का कारण, दवाई की जरूरत नहीं, इसको हटा दो ना? मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, ये व्यक्ति चला जाएगा, व्यक्ति हट जाएगा, मेरा सिर दर्द मिट जाएगा। तो ऐसे हम कई बार लोगों को देख देख करके अपनी भावनाओं को चेंज करते हैं और उसका अपने शरीर के ऊपर कितना असर पड़ने लगता है। और तो और, हमारे मस्तिष्क में जो खून पहुंचाने वाली सूक्ष्म नलिकाएं हैं, जब हम बहुत जोर से गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, तो उन सूक्ष्म नलिकाओं के फट जाने का डर होता है, और जिसके कारण कई बार ब्रेन हेमरेज हो जाता है और उससे भी व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो ऐसे कितने ही कारण गुस्से जो उत्पन्न करते हैं और उसका हमारे शरीर के ऊपर बड़ा गहरा असर पड़ता है। जैसे तन पर असर, ऐसे मन पर असर होता है। मन पर गुस्से के क्या प्रभाव, कि क्रोध करने वाला व्यक्ति अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे देता है ना? सामने वाले को हमारा बटन पता चल जाता है, सामने वाले को हमारा बटन पता चल जाता है कि ये बटन दबाऊंगा और ये हाँ क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे। हमने कम नहीं किया, हमने सामने वाले को अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया कि जब भी दबाओगे हम चालू हो जाएंगे। तो हम अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में सौंप देते हैं। ऐसे ही क्रोध से हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं, जिंदगी में रिलेशंस बनाने के लिए वर्षों लगते हैं, बहुत मेहनत करके, बहुत स्नेह प्यार जुटा करके, बहुत प्यार दे दे करके जो संबंध बनाए होते हैं, वो एक सेकंड के हमारे गुस्से से संबंध टूट जाते हैं। इसलिए कहते हैं रिलेशन एक कच्चे धागे की तरह होता है, धागा टूट जाएगा, आप गांठ बांध करके उसको जोड़ देंगे, लेकिन अंदर में क्या रह जाएगी, गांठ। कांच की प्लेट है, संबंध भी कांच के बर्तन की तरह है। कांच का बर्तन भी अगर हाथ से गिर गया, दो टुकड़े हो जाएंगे। आप कोशिश करके उसको जोड़ भी देंगे, लेकिन फिर भी बीच में क्या दिखाई देगी, दरार। तो संबंधों को बनाने में वर्षों लगते हैं, लेकिन संबंधों को मिटाने में मिनट भी नहीं लगते। और वो संबंध यहां तक बिगड़ जाते हैं, फिर कहेंगे मैं तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पीऊंगा, भले पानी एक ही नल से आ रहा होगा उसके घर में, अपने घर में एक ही कनेक्शन होगा, लेकिन अब संबंध इतने बिगड़ गए कि अब मैं तुम्हारे घर का चाय तो बहुत दूर, बाद में बनेगी, लेकिन अब मैं तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। पानी तो छोड़ो, अब मैं तुम्हारे घर में कदम भी नहीं रखूंगा। ये संबंध टूट गए, बिगड़ गए। एक गांव में एक बच्चा बड़ा शरारती, पूरे गांव में चर्चा थी कि जिसके घर में अगर कार का शीशा टूटा है, जिसके घर की खिड़कियां टूटी हैं, जिसके घर में किसी बच्चे को चोट पहुंची है, तो जरूर इसी बच्चे ने किया हो। आए दिन उनके माता पिता के पास उस बच्चे की शिकायत आती रहती थी और माता पिता भी उस बच्चे से बड़े परेशान थे, क्योंकि रोज रोज शिकायत सुन सुन करके वो भी परेशान हो गए थे। एक बार सबक सिखाने के लिए पिता ने अपने बेटे को कहा, बेटा बहुत सारी उसको कील दी, ठोकते ना कील और हथौड़ी, तो बहुत सारी कील और एक हथौड़ी अपने बेटे को दी और कहा कि आज सारे दिन में तुम जितने भी लोगों को दुख पहुंचा के आओगे, दर्द पहुंचा के आओगे, मार के आओगे, पीट के आओगे, किसी के घर का कुछ तोड़ के आओगे, जितना भी कुछ करके आओ ना, ये घर के सामने जो पेड़ खड़ा है उस पेड़ के तने पर उतनी कील ठोकते जाना। उस बच्चे को लगा पिताजी ने कोई खिलौना दिया है खेलने के लिए, और बहुत प्यार से वो कील और हथौड़ी लेकर के वो अपने घर से निकल गया। चार को मार के आया, चार कील ठोक दी। दो कार के शीशे तोड़ के आया, दो कील ठोक दी। सारे दिन में सुबह से लेके शाम तक में सब कुछ हरकतें करके आने के बाद सारी कील पेड़ के अंदर ठोक दी और बड़े प्यार से कहा, पिताजी जितनी भी कील दी थी ना सब पूरी कर दी, सारी की सारी ठोक दी। तो क्या पिताजी ने भी उसको ठोक दिया होगा? तुमने कील को ठोका, अब मैं तुमको ठोकता हूँ? कहा, बेटा अभी तो तुमको मैंने हथौड़ी दी थी, अब ये पकड़ लो और इस पकड़ से जितनी कील तुमने ठोकी है ना वो एक एक करके बाहर निकालो। बड़े प्यार से उसने उस पकड़ को भी स्वीकार किया और सोचा ये दूसरा खिलौना मिला है, और एक एक करके सारी कील बाहर निकाल के फिर इकट्ठी करके पिताजी को दी, लो जितनी दी थी उतनी वापिस। पिता ने कहा, बेटा ठोकना भी आसान था, निकालना भी आसान था, पर अब इस पेड़ में क्या रह गए? अब इसके अंदर जो होल हो गए हैं, छेद हो गए हैं, ये कौन भरेगा? ये होल कौन भरेगा? हम भी थोड़ा कुछ करने के बाद तुरंत कह देते हैं, सॉरी मेरा भाव ऐसा नहीं था। बोलना आसान, लेकिन जो शब्द की चोट सामने वाले को पहुंची है वो शब्द की चोट का कोई इलाज नहीं। पत्थर की चोट के लाखों इलाज हैं, पर शब्दों की चोट का कोई इलाज नहीं। और इसीलिए लोग कहते हैं, इसके शब्द मेरे दिल में घाव कर गए, उसका कोई इलाज नहीं। आपने सुना होगा ना, कहते ये जबान में ना एक भी हड्डी नहीं होती है, पता है आप सबको? नहीं हो तो पकड़ के देखो, जबान में एक भी हड्डी नहीं होती, पर ये जबान चलना शुरू करती है तो ये जबान चलना शुरू करती है तो कितनों की हड्डियां, क्या ताकत है उसके अंदर है? जिसके अंदर एक हड्डी नहीं और जब ये चलना शुरू करती है तो कितनों की हड्डियां तोड़। तो ये शब्दों की चोट बड़ी गहरी चोट होती है, जो हमारे संबंध को, हमारे रिलेशंस को बिगाड़ देती है। गुस्से में जब व्यक्ति होता है तो वह सच और झूठ का भेद भी नहीं कर पाता, सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हमें लगता है मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है, कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है, कोई मुझे पहचानता नहीं है, और उसको लगता है मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ बिल्कुल राइट है, और उस समय वो सच और झूठ को भूल जाता है। लास्ट क्रोध कुछ पलों का, कुछ क्षणों का पागलपन है। गुस्से को कहा जाता है ये कुछ क्षणों का पागलपन है। कहते क्रोध की शुरुआत मूर्खता से होती है, तो क्रोध का अंत पश्चाताप से होता है। क्रोध की शुरुआत मूर्खता से होती तो क्रोध का अंत पश्चाताप से होता है। एक रियल स्टोरी मैं आपको बताऊं, बहुत वर्ष पहले एक न्यूज़पेपर में आई थी। एक माँ अपने 4 साल के बच्चे को रोज बैठ करके पढ़ाती थी, गिनती सिखाती थी। अब चूंकि माँ को बच्चे को पढ़ाना भी होता है, किचन में काम भी करना होता है, तो एक दिन माँ ने सोचा चलो मैं बच्चे को गिनती भी सिखाती जाती हूँ और किचन में काम भी करती जाती हूँ। बच्चे को किचन में अपने साथ बिठा लिया। माँ सब्जी काट रही थी और बच्चे को गिनती बोलना सिखा रही थी। बेटा बोलो 1, 2, 3, 4, 5। बच्चा बराबर बोलता जा रहा था, बोलता जा रहा था, सीखता जा रहा था। जैसे ही माँ ने कहा बेटा बोलो 40, बच्चे को बोलना नहीं आ रहा था, छोटा था, बोल नहीं पा रहा था। दूसरी बार सिखाया बेटा बोलो 40, नहीं बोल पाया, नहीं सीख पा रहा। तीसरी बार, चौथी बार सिखाया। अब जब बच्चा बोल नहीं पा रहा था, सीख नहीं पा रहा था, उस माँ को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि जिस चाकू से वो सब्जी काट रही थी उस चाकू से वो अपने बच्चे की गर्दन काट दी थी। अब आप इसको समझदारी कहेंगे या मूर्खता? क्या है? मूर्खता। अब जिंदगी भर उस माँ को क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप। शायद कुछ वर्षों के बाद वो बच्चा 40 बोलना सीख जाता, पर अब जिंदगी भर के लिए बच्चा हाथ से चला गया। तो शुरुआत मूर्खता से होती तो अंत पश्चाताप से होता। आपने इलेक्ट्रिक बोर्ड देखा है? इलेक्ट्रिक बोर्ड देखा है? किस किसने देखा है? किस किसने देखा है? क्यों बाकियों ने इलेक्ट्रिक बोर्ड ही नहीं देखा है क्या? अच्छा, इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होता है उसमें ऊपर क्या निशान होता है? हाँ, डेंजर, खोपड़ी का निशान होता है, खोपड़ी। और उसके नीचे क्या लगा रहता है? क्रॉस। और नीचे क्या लिखा रहता है? खतरा, 440 वोल्ट छूना मना। ऐसी जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी खोपड़ी पे भी चौकड़ी लग जाती है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी खोपड़ी पे भी चौकड़ी लग जाती है। इस समय इसका 440, अभी इसको छूना मना, खतरा। अब ये खतरे की घंटी। तो हम खुद अपनी अकल को, अपनी शक्ल को इस क्रोध जैसी बातों से बिगाड़ देते हैं। तो संबंध भी बिगड़े, अपने आप से रिलेशन भी बिगड़े, अपनी स्थिति भी बिगड़ी, मन स्थिति भी बिगड़ी, हम सब कुछ अपना खो देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि समझ में आता है कि सबको कोई ना कोई बात से, किसी ना किसी कारण से गुस्सा आता है, आता है, सभी ने कहा है। ऐसे ऐसे कौन से कारण है जो हमारे अंदर क्रोध पैदा करते हैं? कौन से कारण है, किस कारण से गुस्सा आता है? हाँ, जितने लोग बैठे ना उतने कारण मिल जाएंगे यहाँ पे, है ना? सबके अपने अपने कारण है। किस कारण से आता है? हाँ, मेरी विल पर चले, और हाँ, अभाव के कारण, कामनाओं में बाधा पड़ती है तो गुस्सा आता है। और क्यों आता है? ईगो ईगो प्रॉब्लम और क्यों आता है? मेरी इच्छा के विरुद्ध काम होता है तो बहुत गुस्सा आता है, और क्यों होता है? कोई झूठ बोलता है तो बहुत गुस्सा आता है। कुछ एक बातें बड़ी कॉमन है और जो हमें गुस्सा दिलाती है, उसमें सबसे पहली बात कि ये मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है ना, लगता है ना कि सब मेरी इच्छा से चले, मैं घर में बड़ा हूँ, बड़ा समझदार हूँ, है ना, सबको मेरी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, सबको मेरा कहना मानना चाहिए, ठीक है ना। जो ये समझते हैं कि जब कोई मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है तो मुझे गुस्सा आता है, वो हाथ खड़ा करो। क्यों भाई, हाथ कम क्यों हो गए? जो ये समझते हैं कि मेरी इच्छा के विरुद्ध काम होता है तो गुस्सा आता है, वो अपने आप से पूछो कि क्या मैं सबकी इच्छा के अनुसार चलता हूँ? हाँ, क्या मैं सबकी इच्छा के अनुसार चलता हूँ? जब मैं सबकी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकता तो सब मेरी इच्छा के अनुसार चले संभव है? नहीं। तो सीधा सा सॉल्व ना, प्रॉब्लम क्या है? जब मैं सबकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता तो वो भी मेरी इच्छा पूरी? अरे 1000 वॉट का बल्ब, उससे मैं बार बार अपेक्षा रखूं, ये 2000 जितनी रोशनी क्यों नहीं देता? पर उसकी क्षमता कितनी है? 1000 की। तो उसकी जितनी क्षमता है, उस क्षमता को अगर मैं ध्यान में रखूं और उसके अनुसार उससे अपेक्षा रखूं तो शायद मुझे गुस्सा। हर एक समझता है मेरा बेटा तो सुपरमैन होना चाहिए, सुपरस्टार होना चाहिए, मैरिट में आना चाहिए, ये होना चाहिए, पर सामने वाले की क्षमता को भी तो हमें ध्यान में, और उसके अनुसार जब मैं उससे काम लूं, उससे बात करूं, तो शायद वो भी कर पाएगा और वो चीज मैं भी एक्सेप्ट कर पाऊंगी। कई बार तो गुस्से में आकर कहते हैं, याद रखना मैं तुमको सीधा कर दूंगा, और उस समय खुद कैसे हो जाते हैं? गुस्से में आकर कहते हैं, याद रखना मैं तुमको सीधा कर दूंगा, और खुद क्या हो गए? ये कौन सी बात हुई भाई? सामने वाले को सीधा करना है तो खुद को भी सीधा रहना पड़ेगा ना। ये परिस्थिति तो ऐसी हुई कि हाथ में जलता हुआ कोयला रखा है और दूसरों को मारने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले कौन जल रहा है? खुद जल रहे हैं, पॉइजन खुद पी रहे हैं और दूसरों के मरने और मारने की तैयारी कर रहे हैं, तो पॉसिबल? तो अगर मैं सबकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता तो मुझे भी सबसे ये इच्छा नहीं रखनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी जो लोगों को तकलीफ होती है कि ये झूठ बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा होता है ना ऐसा। अच्छा, किस किस को आता है इस बात से गुस्सा? इस बात से किस किस को गुस्सा आता है? क्यों डर गए क्या पहली पॉइंट से? नहीं, कोई झूठ बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। जैसे मैंने जिंदगी में कभी झूठ, मैं तो सत्यवादी, आप ही बोल रहे हैं, है ना? जैसे खुद सत्यवादी हरिश्चंद्र जिंदगी में कभी झूठ बोला ही नहीं है, इसलिए कहते हैं सामने वाला झूठ बोलता है तो मुझे बहुत। अब झूठ बोलना अगर गलत है तो गुस्सा करना कौन सा सही है? ये तो नहले पे दहला हो गया ना। अगर झूठ बोलना गलत है तो झूठे पर गुस्सा करना वो तो और ज्यादा गलत है। तो झूठ को अगर सच का रास्ता दिखाना है तो उसके लिए भी तो बहुत से इलाज हैं। एक बार एक बाप बेटे गांव से शहर की ओर गए और शहर की ओर जाते जाते दोनों ने प्लान किया, क्योंकि घर में जो कार थी, कार की बहुत समय से सर्विसिंग नहीं हुई थी और गांव में सर्विसिंग की फैसिलिटी नहीं थी। तो पिता ने बेटे को कहा कि बेटा, ये घर गांव से शहर की ओर जाने वाला जो 18 माइल का रास्ता है, हम दोनों साथ में चलते हैं, तुम गाड़ी को गैरेज में दे देना, सर्विसिंग करा लेना, और तब तक मैं अपने फ्रेंड के पास चला जाऊंगा, जिस फ्रेंड से मैं वर्षों से मिलने की इच्छा रखता था उस फ्रेंड से भी मैं मिल सकूंगा। दोनों बड़ा प्लान करके घर से निकले। बेटे ने गाड़ी ली, पिताजी को बिठाया, 18 माइल गए, शहर की ओर गए, पिताजी को उनके फ्रेंड के घर में छोड़ा और बेटा सर्विसिंग के लिए गाड़ी को उन्होंने गैरेज में दे दी। सर्विसिंग के लिए जब गाड़ी को गैरेज में दी तो मैकेनिक को बेटे ने पूछा कि इसके सर्विसिंग में कितना टाइम लगेगा, तो मैकेनिक ने कहा कि कम से कम 2 घंटा। ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात है, कम से कम 2 घंटे में आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी। बेटे ने सोचा पिताजी तो गए हैं अपने फ्रेंड के पास, गाड़ी को लगेगा 2 घंटा सर्विसिंग में, मैं यहाँ बैठे बैठे क्या करूंगा, पिताजी को पता नहीं चलेगा, पास में थिएटर है, चलो एक फिल्म देखकर आ जाता हूँ। बेटा थिएटर में चला गया, पिक्चर देखने में मशगूल हो गया, पिक्चर थोड़ी लंबी थी, देखते देखते उसको टाइम का भान नहीं रहा, जैसे 3 घंटे में फिल्म पूरी हुई टाइम देखा और भागा, और जैसे वो गैरेज में गया गाड़ी उठाई और पिताजी के पास कहा बस अब जाकर के गाड़ी ठीक हुई, 3 घंटे से मैं गैरेज में बैठे बैठे थक गया था पिताजी, अभी गाड़ी जैसे ही ठीक हुई है मैं आपके पास पहुंच गया। उसको पता नहीं कि पिताजी पहले से सब पता कर चुके थे। पिता ने कहा कि बेटा अब यहां से वापस जो घर जाने का 18 माइल का रास्ता है, मैं इस गाड़ी में तय नहीं करूंगा, अब यहां से जो घर जाने का 18 माइल का रास्ता है अब मैं पैदल तय करूंगा। सजा देखो सजा, अगर हमारे साथ ऐसा होता तो हम क्या करते उसी समय पे ठोक पीट देते हैं, झूठ बोलते हैं, मेरे को सब पता है तुमने क्या किया, कहाँ गए थे, क्या किया। नहीं, बड़े आराम से कहा ये रास्ता मैं पैदल तय करूंगा और मैं ये देखूंगा कि इस बच्चे की परवरिश में मैंने ऐसी कौन सी कमी रखी है जो आज मेरे बेटे को मेरे सामने झूठ बोलना पड़ा। कितना सुंदर तरीका, कितना धीरज, कितनी सहन शक्ति। अब मैं खुद रियलाइज करूंगा कि मेरी परवरिश में कौन सी कमी थी जो बेटे को आज मेरे सामने झूठ बोलना पड़ा। अब बताइए क्या वो बेटा दोबारा ऐसी गलती करेगा, झूठ बोलेगा? हम समझते हैं कि जब तक उसको डांटेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, तब तक वो सुधरेगा नहीं। उसको सजा देने के बजाय पिता ने क्या किया, अपने ऊपर सजा ली, अपने आप को पनिश किया, अपने आप से पूछा। और ऐसे ही कई बार हम अपने मन को प्रोग्राम दे देते हैं, बात कुछ होती नहीं है, बहुत पहले का झगड़ा होता है, लेकिन हम अपने मन को प्रोग्राम दे देते हैं कि जब वो व्यक्ति मेरे सामने आएगा ना मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करूं। अभी तो आया नहीं है बेचारा, लेकिन मन को बार बार ये प्रोग्राम दे दिया वो जब मेरे सामने आएगा तो मैं ऐसा करूंगा, मैं उसको मारूंगा, मैं उसको देखूंगा भी नहीं, मैं उससे नफरत करूंगा, मैं मुख मोड़ के चला जाऊंगा। अंदर ही अंदर प्रोग्राम देते रहते हैं, वो सारा प्रेशर अपने मन में भरते रहते और जैसे वो व्यक्ति अच्छे काम के लिए भी हमारे सामने आता है हमारा तुरंत रिएक्शन चेंज होता है, क्योंकि हमने बार बार अपने मन को नेगेटिव प्रोग्राम दे दिया। तो कारण तो बहुत सारे हैं, टाइम को देखते हुए हम निवारण की ओर चलेंगे कि कौन से बातें हैं जिससे हम अपने अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 2 चीजें हैं, एक है टेम्पररी सॉल्यूशन और दूसरा है परमानेंट सॉल्यूशन। पहले हम चलेंगे टेम्पररी सॉल्यूशंस की ओर, कि जब मुझे अचानक गुस्से वाली कोई बात आती है उसी समय मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे करूं, वो मेरे टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको परमानेंट नहीं समझना, लेकिन ये टेम्पररी सॉल्यूशंस क्या है? ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर। जब आपको लगता है कि अभी मुझे गुस्सा आ सकता है, इस बात से ऐसा हो सकता है, उस समय पर उठकर, ये डॉक्टर्स हमें सॉल्यूशन देते हैं, धीरे धीरे एक ग्लास पानी पीना शुरू कर दें। अब पानी में ऐसे कोई तत्व नहीं है जो पानी से हमारा क्रोध शांत हो जाए, लेकिन जब हम धीरे धीरे वो पानी पीना शुरू करते हैं तो हमारा टाइम पास होने लगता है, वो टाइम गुजरने लगता है, उस परिस्थिति को हम पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब ऐसा लगे टेम्पररी सॉल्यूशन, एक ग्लास पानी पीना शुरू कर दें, धीरे धीरे पानी पीना शुरू कर दें। दूसरा है उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें। सीधी गिनना फास्ट फास्ट और जल्दी हो जाता है, लेकिन जब उल्टी गिनती गिनना शुरू करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, 20, 19, 18। जब उल्टी गिनती करते हैं तो थोड़ा सा उसमें टाइम पास होता है। जब मुझे लगता है कि परिस्थिति मेरे सामने आ रही है, मुझे टालना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, आप वहां से हट करके थोड़ा उल्टी गिनती करना शुरू कर दें। उस समय पे हम गहरी श्वास ले सकते हैं, जो अंदर का दर्द है, जो अंदर की तकलीफ है, उसको मिटाने के लिए, उस गुस्से से मुक्त होने के लिए टेम्पररी हम डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वास लेना शुरू कर दें। और उससे भी एक और सॉल्यूशन, कुछ समय के लिए हम वॉक पर चले जाएं, उस स्थान से हट करके वॉक पर चले जाएं, एक अलग रास्ता निकाल लें, वॉक पर चले जाएं। उस स्थान पर ही नहीं रहेंगे तो वो बात भी हमारे मन पर नहीं आएगी। अगर हम घर में हैं और ऐसी बातें हमारे सामने आ रही है तो डॉक्टर्स कहते हैं उस समय कच्ची सब्जियां चबाना शुरू कर दो। वैसे भी सलाद खाने का टाइम नहीं होता ना लोगों को, है? तो डॉक्टर्स कहते हैं कच्ची सब्जियां चबाना शुरू कर दो। जब उसको हम चबाते हैं तो हम उस समय भी अपने गुस्से को एक्सप्रेस करते हैं, काकड़ी है, गाजर है ना, ऐसी चीजों को जब हम जोर जोर से चबाते हैं, अच्छे दांत भी मजबूत हो जाते हैं और गुस्सा भी हमारा उसके ऊपर एक्सप्रेस हो जाता है, जरा पेट भी भर जाता है, सलाद खाना भी सीख जाते हैं, है ना, नहीं तो वैसे फुर्सत नहीं मिलती है। या आपका बहुत प्यारा सा कोई गीत हो जिस गीत को सुनकर के आपके अंदर खुशी पैदा होती हो, ऐसे समय पर आप कोई गीत गुनगुनाना शुरू कर दो, कोई गीत मनोमन गाना शुरू कर दो। और लास्ट सेक एंगर, आप अपने गुस्से को फेंको। कैसे फेंकेंगे, कैसे फेंकेंगे, इधर उधर, हाँ, आगे पीछे कैसे फेंकेंगे? चलिए मेरे साथ करेंगे। अब ये है जो है ना, वो किसी और के सामने मत करना, नहीं तो कहेंगे ये क्या सीख कर आए हो, है ना? ये है जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर किया ना तो प्रॉब्लम उसके सामने नहीं, जरा दूर हट करके आप अपने गुस्से को फेंको, बाहर फेंक दो। आपकी मसल्स भी टाइट हो जाएगी, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी और अंदर की जो भावना है वो भी बाहर निकल जाएगी। पर ये सारे टेम्पररी सॉल्यूशंस थे, ये कुछ समय का टेम्पररी इलाज साथ साथ हमें परमानेंट सॉल्यूशन को भी तो निकालना है। और वो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि जब हमें गुस्सा आता है तो पहली चीज है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग क्या सिखाती है, जैसे पहले हमने अपने मन को नेगेटिव प्रोग्राम देकर रखा था कि जब वो व्यक्ति मेरे सामने आएगा मैं ऐसा व्यवहार करूंगा, उसकी जगह पॉजिटिव प्रोग्राम अगर अपने मन को हम दे दें कि भले वो कैसा भी है लेकिन जब वो मेरे सामने आएगा मैं उसके साथ दोस्ती का, आवाज ही नहीं आता है क्योंकि बहुत टफ लग रहा है, ऐसा है, मुश्किल है, मुश्किल है, हाँ या ना, पॉजिटिव प्रोग्राम मन को दे देवे, वो जब मेरे सामने आएगा ना मैं उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा लूंगा, जब वो मेरे सामने आएगा ना मैं उसको गले लगा करके उसकी सारी गलतियों को माफ कर दूंगा ना, मैं जिंदगी भर के लिए उसकी सारी बातों को भूल जाऊंगा। तो जैसे नेगेटिव बात का असर मन पर, ऐसे पॉजिटिव बात का भी तो हमारे मन पर असर पड़ेगा ना, और जो चीज अंदर में भर भर करके रखेंगे वही चीज हमारे बाहर निकलेगी। तो पॉजिटिव थिंकिंग, जैसी भी परिस्थिति, जैसे भी लोग, जिनसे भी अगर मेरी नहीं बनती है लेकिन बार बार के पॉजिटिव प्रोग्राम से शायद वो स्थिति पर मैं जीत प्राप्त कर सकूंगा। पॉजिटिविटी के साथ साथ सेट इन योर ओरिजिनल स्टेट, अपने माइंड को अपनी ओरिजिनल स्टेट में ले जाएं। और हमारी ओरिजिनल स्टेट क्या है, शांति की, जो आपको दो तीन दिन से यहां सुनने के लिए मिल रही है कि हम सब एक शांत स्वरूप आत्मा है। मेरा निजी धर्म, मेरा निजी गुण वो शांति का है। ये गुस्सा तो मैंने बाह्य स्वरूप से अपनाया, ये मेरा अपना नहीं, और जो चीज मेरी नहीं है उसको मुझे छोड़ देना। तो जब बार बार मैं अपने आप को उस ओरिजिनल स्टेट की ओर ले जाऊं कि नहीं मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो इन सब बातों का प्रभाव इस मन के ऊपर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, रिलैक्स, मेडिटेट। मेडिटेशन क्रोध से फ्री होने की, मन को शांत करने की एक सबसे अच्छी दवा है। जितना मन को ईश्वर के प्रति टिकाते हैं, जितना मन को हम एकाग्र करते जाते हैं, जितना मन को शांति की शक्ति से भरपूर करते जाते हैं, और वो होता है मेडिटेशन के माध्यम से, जितना मन और बुद्धि को परमात्मा के प्रति एकाग्र करेंगे वो मेडिटेशन हमारे मन को शांत करते करते हमारे अंदर की जो गलत भावनाएं हैं, नेगेटिव भावनाएं हैं, उनको वो सदा काल के लिए समाप्त कर देगी। और लास्ट है पोस्टपोन एंगर। आप अपने गुस्से को क्या करो, पोस्टपोन करो। जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा है ना, सोचो ठीक है इस पर कल कर लूंगा, हो सकता है हा? जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा है सोचो ठीक है कल कर लूंगा, हो सकता है, हो सकता है, उस समय तो सोचते हैं आज हाथ में आ, पोस्टपोन किया जाता है, उसकी जगह गुस्से की भावनाओं को हम पोस्टपोन कर। गुस्से के भी तीन प्रकार हैं, एक है पानी पर लकीर, एक है रेत पर लकीर, और एक है पत्थर पर लकीर। पानी पर लकीर अर्थात पानी पर लाइन खींचो कितनी देर, लाइन खींची और खत्म। रेत पर लकीर खींचो कितनी देर, थोड़ा समय तक रहेगी, हवा का झोंका आया खत्म। पत्थर पर लकीर खींचो तो हाँ अमर, कभी ना मिटे। अच्छा आप सबका गुस्सा कैसा है, पानी जैसा किस किस का गुस्सा पानी पर लकीर के समान है, हाँ ये देखो अभी सब देख रहे हैं आपको, इसमें सब कैद हो रहे हो। अच्छा किसका गुस्सा रेत पर लकीर के समान है, इसका मतलब बाकी सब इसका मतलब सब पत्थर पर लकीर, पानी पर लकीर, अर्थात थोड़ा समय पर वो गुस्से की बात रही फिर खत्म, सेकंड में मिट गया। रेत पर लकीर अर्थात सुबह से शाम तक अनबनी रही फिर रात गई और वाह बड़े होशियार हैं। और पत्थर पर लकीर अर्थात प्राण जाए वाह मार के मरूंगा पर छोड़ूंगा नहीं, ऐसे पत्थर पर लकीर की तरह हो जाते हैं। इसने मेरे साथ ऐसा किया ना, अब इसको मैं देख लूंगा छोड़ूंगा पत्थर पर लकीर। वो गांठ बांध के रखते और वो खुद को ही दर्द देती है, खुद को ही तकलीफ देती है, किसी और को परेशानी नहीं, खुद को ही उसकी परेशानियां भुगतना पड़ती है। तो आज संकल्प क्या करेंगे, आज संकल्प क्या करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, वह बजाओ तालियां। गुस्से से फ्री होने के लिए हमारी दादी जी एक बड़ी अच्छी बात कहती है, अपनी जिंदगी में कम से कम 3 फैक्ट्री खोल लो। 3 फैक्ट्री, कौन कौन फैक्ट्री ओनर्स हैं यहाँ पर, आज सब 3 फैक्ट्री के मालिक बनने वाले हैं। पहली फैक्ट्री अपने हार्ट के अंदर, वह है लव फैक्ट्री। कौन सी? लव फैक्ट्री अपने हार्ट के अंदर। दूसरी अपने माइंड के अंदर, मन के अंदर आइस फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री। और तीसरी फैक्ट्री अपने मुख के अंदर, शुगर फैक्ट्री। ओके हार्ट में कौन सी फैक्ट्री? लव फैक्ट्री। ठीक है, आज से सबसे वैर की जो भावनाएं थी खत्म, खत्म, सबकी लव फैक्ट्री खुल गई है। दूसरी आइस फैक्ट्री, मन में कोई नेगेटिव थॉट मेरे मन के अंदर आ नहीं सकते। और तीसरी शुगर फैक्ट्री, कभी डायबिटीज नहीं होगी, शुगर फैक्ट्री। जैसा भी है भगवान का बच्चा है, जब भगवान को प्यारा है तो मुझे भी प्यारा है। तो फिर हम तीनों फैक्ट्री के अगर मालिक बन गए, लव फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री और शुगर फैक्ट्री, ठीक है, कौन कौन बनना चाहेगा 3 फैक्ट्री का मालिक? वाह तो सब इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए भैया आज तो। वेरी नाइस। जिंदगी में आपने जब पहली बार उपवास किया होगा, पहली बार जब उपवास रखा होगा, तकलीफ आई थी, तकलीफ हुई थी, हाँ, व्रत रखा होगा जब तकलीफ हुई थी, क्योंकि जब किचन में जाओ बड़ी भूख लगने लगती होगी, थाली सामने आती होगी तो मुश्किल होती होगी, सड़क से गुजरो होटलें दिखती होगी तो तकलीफ होती होगी, पहली बार जब व्रत रखा तो तकलीफ होती, लेकिन जब पहली बार व्रत रखा, सारा दिन आपने उपवास किया, आपको लगा मैं अपने पेट पर, अपने मुख पर कंट्रोल कर सकता हूं, तो दूसरी बार आपको व्रत रखने की हिम्मत। ऐसे जिंदगी में जब पहली बार आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया होगा तो तकलीफ हुई थी, हाँ, हाथ पैर हिलाए होंगे, गर्दन हिलाई होगी, कमर हिलाई होगी, तकलीफ थी, है ना, थोड़ा दर्द रहा होगा सारा दिन। जब दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, तो वो प्रैक्टिस हो गई, फ्लेक्सिबल हो गए, तो रोज रोज वो एक अच्छा अभ्यास हो गया। तो कोई भी काम जब पहली बार किया जाता है तो तकलीफ तो, और जब उसको हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक हमारे लिए हमारा अभ्यास हो जाती है। इसलिए आज सबको एक व्रत लेना है, और ये व्रत कम से कम एक दिन, मैं समझती यहाँ के माहौल में तो किसी को गुस्सा आएगा ही नहीं, ये प्रॉब्लम तो आएगी यहाँ से यहाँ नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम आएगी यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि इस माहौल में, इस वातावरण में, इस कैंपस में तो गुस्सा ना आएगा, ना करेंगे, ना होने देंगे। ओके, जब आप यहाँ से जाए तो कम से कम एक दिन के लिए एक व्रत रखना, और वो व्रत क्या रखना कि आज मुझे सुबह से लेके रात तक गुस्सा आवाज कम नहीं करना है। और जरा अपने परिवार वालों को बोल के रखना कि मैंने ये व्रत, और जिस दिन आप लेके बैठेंगे देखना उस दिन बातें ज्यादा आएगी, आपकी परीक्षाएं बहुत आएगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कंट्रोल रहा तो आपको हिम्मत आएगी कि मैं एक दिन कंट्रोल कर सकता हूं तो मैं दूसरे दिन भी कर सकता हूं। और धीरे धीरे शायद उस स्टेज को हम ला सकते जो पत्थर पर लकीर था, वो पानी, वो पत्थर की लकीर से रेत की लकीर, और रेत की लकीर से हम पानी की लकीर, इतना तो रहना चाहिए ना। और धीरे धीरे हम अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे अपनी उस आत्मिक स्टेज के द्वारा, अपनी उस ओरिजिनल स्टेज के द्वारा, और एक दिन हम सब खुशी के माहौल में रहेंगे, खुशी से जिएंगे। इसीलिए कहते हैं आसमान में इतने तारे हों जो आसमान दिखाई न दे, आसमान में इतने तारे हों जो आसमान दिखाई न दे, आप सब भाई बहनों के जीवन में इतनी खुशियां हो जो कभी गुस्सा दिखाई न दे, जो कभी गुस्सा दिखाई न दे। थैंक यू, ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत दिल से थैंक्स संगीता बहन को कि आज हम सबके लाइफ में बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट आया है, क्योंकि यही सारी बातों से हमारी जीवन की जो गाड़ी है वो रुकती है, अटकती है। तो हमारे लाइफ के कार को बहुत इजी कर दिया, इसलिए फिर एक बार हम थैंक्स करते हैं। अभी नेक्स्ट सेशन हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, प्रश्न उत्तर का सेशन है, जिसमें हमारे मोहन सिंगल भाई जी, ईवी गिरीश भाई जी, हमारे डॉक्टर गिरीश पटेल भाई जी, ये सब पहुंच रहे हैं। तो अभी 5 मिनट्स हम मेडिटेशन करेंगे और नेक्स्ट सेशन शुरू करें।
Thank you.